नमो अरिहंतायणम् नमो सिद्धायणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, दीपावली पर्व सामने आ रहा है। उस दिन के लिए आप सभी दीप जलाने हेतु तैयारी कर रहे हैं। दीप तो रोज जलते हैं घरों में, ये दीप अलग हो जाते हैं, और जो दीप जलने चाहिए विशेष रूप से वो दीप अलग होते हैं। दीपक क्या है, उसको हम क्यों जलाते हैं घर में? घर में तो जलाते ही हैं, दीपावली के दिन भी घर में ही जलाते हैं, रोज भी घर में जलाते हैं और दीपावली के दिन भी हम घर में ही जलाते हैं। रोज क्यों जलाते हैं? अंधकार को दूर करने के लिए और प्रकाश में अपना कार्य करने के लिए दीप जलाते हैं। दीप अंधकार का विरोधी है, और कैसा दीप? जलता हुआ दीप क्या बुझा हुआ दीप? जलता हुआ दीप ही अंधकार को दूर कर सकता है, बुझा हुआ दीप कभी अंधकार को दूर नहीं कर सकता। अंधकार को दूर करने की क्षमता उसके पास अवश्य है, परंतु वह प्रकाशित हो, वह जले, ज्योति में रूपांतरित हो, इसके लिए अवश्य बाहरी निमित्त उसको चाहिए पड़ते। व्यक्ति दीप के पास जाता है, दीप को उठा लेता है, जिसके भीतर बाती भी होती है और तेल भी होता है, दोनों होते हैं ना। सबसे पहले क्या होते हैं? दीप और तेल, दो को लाया जाता है। क्या एकदम से माचिस बॉक्स लेकर के खड़े हुआ जाता है? नहीं, सबसे पहले तो जिसमें बाती डालना है और जिसमें तेल या घी को डालना है कौन सा अच्छा, घी अच्छा है या तेल अच्छा है, कौन सा भी चल जाएगा, हमको तो प्रकाश से मतलब है। प्रकाश से ही केवल मतलब है और उस प्रकाश के साथ साथ कुछ और भी कार्य सिद्धि करना है तो बहुत सोच विचार करके उस वस्तु का चुनाव हम करते हैं। तेल डालें या घी डालें, तेल डालें या घी डालें, कई लोग पसंद नहीं करते। मंदिर में भगवान के सामने आरती जलाने के लिए, आरती उतारने के लिए तेल डाल करके आरती उतारना नहीं चाहते। क्यों? क्या उससे नहीं जलता? जलता तो है, तेल को पसंद क्यों नहीं करते? तेल को पसंद इसलिए नहीं करते, तेल से कार्बन बनता है, इसलिए कार्बन प्रदूषण को पैदा करता है। तेल से अच्छा है घी। घी डालते हैं और दीप जलाते हैं तो जलाने के उपरांत वह जो जल जाता है और अपने परमाणुओं को बिखेर देता है, उसमें भी एक प्रकार की सुगंधि होती है। वातावरण में जो प्रदूषण होता है उसको हटाने के दो उपाय करते हैं लोग, या तो उदबत्ती जलाते हैं, या तो घी जलाते हैं, या तो कपूर जलाते हैं। उदबत्ती, कपूर या घी को जलाने से वातावरण पवित्र होता है और निर्मल होता है, इस हेतु तेल पसंद नहीं करते और घी पसंद करते हैं। दीपावली के दिन घृत का दीप जला करके हम यह भावना भाते हैं, जिस तरह से यह दीपक घृत का दीपक है और स्वयं जलता है, स्वयं जलते हुए स्वयं प्रकाशित भी रहता है और दूसरे को भी प्रकाश देता है, और जल करके जिन परमाणुओं को वह विसर्जित करता है वह प्रदूषण को दूर करता है। ये दीपक का कार्य है, गुण है, और इसलिए तेल नहीं घृत, घी का दीपक श्रेष्ठ है क्या तेल का दीपक श्रेष्ठ है? कोई भी ये नहीं कह सकेगा तेल का दीपक बहुत श्रेष्ठ है। ये जरूर कह सकता है महाराज घी महंगा है, तेल सस्ता है। सस्ता दीपक सस्ता है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो इस दृष्टि से देखोगे तो दृष्टि दूसरी ओर गई, वो फिर धर्म की ओर दृष्टि नहीं आई, उसके गुणधर्म की ओर दृष्टि नहीं आई, इसकी कीमत होने लगी। दीपावली के दिन हम सभी दीप जलाते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं, और क्या करते हैं, निर्वाण लाड़ू अर्पित करते हैं, और क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं लास्ट में। दीपावली के दिन ये सब तो करते हैं लेकिन फटाके भी फोड़ते हैं। फटाके फोड़ना दीपावली का अंग कहला सकता है क्या? घृत का दीप जलाना तो ठीक है, स्मृति के रूप में अपन उसका उपयोग प्रयोग करते हैं, आरती उतार देते हैं, आरती घी घी की आरती होती है, आरती उतारते हैं, आरती के काल में उसमें घी डाल करके उस दीप को दीपावली के दिन जलाते हैं, वो नहीं मिलता है, उससे सस्ती चीज एक और लाते हैं जिसको मोमबत्ती बोलते हैं, उसको मैनबत्ती भी बोलते हैं, मेनबत्ती। यानी बत्ती तो मेन वही है इसलिए मेनबत्ती, बाकी तो मेन नहीं गौण है। मेनबत्ती जलाते हैं, मेनबत्ती भी दीपावली के दिन जलाना जहां तक महाहिंसा है, क्योंकि उस वह मेनबत्ती नहीं, वह मैनबत्ती है। उसमें म्यान डाल दिया जाता है। म्यान मालूम है क्या होता है? मधुमक्खी का जो छत्ता लगता है, उस छत्ते से जो चिकना चिकना पदार्थ निकलता है वो, और कुछ केमिकल उसमें मिक्स करके इस ढंग से उसको तैयार किया जाता है। बहुत सारे कीटों की हिंसा होने के उपरांत उसकी उत्पत्ति होती है। मोमबत्ती जलाना बिल्कुल अशुद्ध है, तेल फिर भी ठीक है, लेकिन मोमबत्ती जलाना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो तीन प्रकार के दीपक, या यूं कहें तो चार प्रकार के, कर्पूर दीपक, घृत दीपक, तेल दीपक, मोमबत्ती और फिर विद्युत बत्ती, ये पांच हैं। विद्युत बत्ती लाइटिंग भी करते हैं, वो क्या दीप नहीं? वो भी दीप है। सभी दीप ये सहज रूप से घर में सब जगह उपलब्ध दीप है। कौन सा? विद्युत दीप। उसका डेकोरेशन करते हैं, लेकिन मंगल नहीं माना गया। विद्युत दीप मंगल के कोटि में नहीं, घृत दीप मंगल का, क्योंकि उसमें ये योग्यता है कि वह प्रदूषण दूर करता है और सुगंधित है। उस वक्त, जिस वक्त महावीर भगवान मोक्ष गए थे, दीपावली स्टार्ट हो गई आपकी, दीप जलाया, उस वक्त मोमबत्ती थे क्या? नहीं थे। उस वक्त बिजली थी क्या? बिजली भी नहीं थी। तेल और घी दो थे, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, शेंगा तेल, खोबरे का तेल, तेल तो था चौथे काल में, घी भी था। इन दो में से किसको जलाया होगा? तो हमारे पहले पासून की बात को हमें पकड़ना है आज। नहीं क्यों लाते हो इसमें मोमबत्ती ला दिया और वो ला दिया, ये ला दिया? नहीं नहीं, जो पहले पासून से है, जिसको जलाया होगा, परिकल्पना करे, चौथे काल के लोगों ने जिस वस्तु का उपयोग किया होगा उसका हम क्यों नहीं उपयोग कर सकते? अवश्य कर सकते। और रोज आरती जो करते हैं मंदिर में, उस आरती में भी आप तेल पसंद नहीं करते, घी पसंद करते हैं। और इस तरह से आप आरती, भगवान की आरती उतारते हैं। मोमबत्ती जलाना तीन क्वालिटी बनाएंगे अपन। मोमबत्ती जला करके काम चलाना पर्व दिनों में, ये जघन्य काम है, जघन्य काम है। तेल जलाना मध्यम है, घी जलाना उत्तम, उत्तम मध्यम जघन्य, इसमें जघन्य काम कभी नहीं करना चाहिए। जो प्राणियों की हिंसा से उपलब्ध हुआ है उसको कभी नहीं करना चाहिए। मोम को निकाला जाता है, करोड़ों लाखों चौरेंद्र जीवों की उसमें हिंसा संभव है, और जो मोम होता है उस मोम में ये योग्यता होती है कि जीवों की उत्पत्ति के स्थान, योनि स्थान जिसको बोलते हैं, वहां पर निरंतर रहता है। मधुमक्खी जब जन्म लेती है किस जगह जन्म लेती है आप सोचिए, वो मोम का जो स्थान है वहां लेती है, या वह अपने मुंह से फूलों के रस को चूस करके लाती है और रग देती है, उस स्थान में जीव उत्पन्न होते हैं क्या मोम के स्थान पर जहां पर वह मल मूत्र करता है, ये समूर्छन जीव कहलाते हैं, चौरेंद्री जीव। समूर्छन जीवों की उत्पत्ति वातावरण में हो जाती है, और कैसा वातावरण उनको चाहिए, अपने ही मलमूत्र के भीतर बाहरी वातावरण का योग मिलने पर वहां योनि स्थान यानी जन्म लेने लायक जगह उत्पन्न हो जाता है, उसमें पात्रता आ जाती है, और कोई आत्मा जो पर गति से आ रहा है चौरिंद्री बनने, वह मनुष्य गति से भी आ सकता है, त्रेंच गति से भी आ सकता है, नहीं, नरक गति से आने वाला जीव नियम से पंचेंद्री बनता है, द्विंद्री नहीं बनता, एकेंद्री नहीं बनता, चौरेंद्री नहीं बनता, तीनेंद्री नहीं बनता, नियम से नरक से आने वाला जीव तो पंचेंद्री बनता है, इसलिए उसमें आकर के जन्म लेना तो संभव नहीं। मनुष्य गति से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर उस मोम के भीतर जन्म ले सकता है, चतुरिंद्री जाति नाम कर्म का उदय होने पर वहां जाकर के जन्म लेता है तो चौरिंद्री बनता है। कितने गति से वहां आते हैं, जिस गति से भी आते हैं वहां पर जन्म लेने के बाद एक जीव जन्म लिया तो उसने अपने मलमूत्र किया, उस मलमूत्र में पुनः वह योग्यता आ गई, अनेकों जीवों की उत्पत्ति का स्थान वह एक स्थान भी बन जाता है, जीवों की संख्या वहीं बढ़ जाती है, वो मधुमक्खी वहीं पैदा हो जाती है, वो वहीं पर अपना आहार ग्रहण करके स्टॉक कर लेती है, संग्रह कर लेती हैं, और उसके आहार को भी छीन लिया जाता है। इसलिए आठ मूल गुणों में तीर्थंकर भगवान ने तीन मकार का त्याग का उपदेश दिया है, मध्य, मांस और मधु। मधु का त्याग इसलिए कराया, मधु को, मधु यानी मधु उसके आहार को छीन लिया जाता है। आपने साल भर मेहनत करके दीपावली तक सारा धन इकट्ठा किया और दीपावली के दिन बाहर ला करके रख दिया, काय के लिए, पहले पासून हम तो ऐसे ही करते हैं, दीपावली के दिन धन भी लाते हैं, सामने रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, धनम पूजयामि लक्ष्मी पूजिया, लक्ष्मी पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, धन भोग सामग्री है या धर्म है, भोग सामग्री। भारतीय संस्कृति में कभी भी भोग सामग्री को और भोगी जीव को दो की पूजा नहीं की है, भोग सामग्री की पूजा नहीं होती यहाँ और भोगी जीवों की पूजा नहीं होती, फिर किसकी पूजा होती है? जो धर्म धारण कर लेता है उस धर्म की पूजा होती चली आ रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा होती आ रही है अनादिकाल से। धन की पूजा किसी ने नहीं की, इस काल में चल पड़ा है, ये बात अलग है। क्यों? क्योंकि हुंडावसर्पणी काल का दोष माना गया है। जब ये हुंडावसर्पणी काल आता है तो बुद्धि में मत मतांतर पैदा होते हैं। ये बुद्धि का विकार है। कैसे विकार पैदा हुआ? हमने धर्म का भी स्वरूप नहीं समझा और धर्म का जो साधनभूत सामग्री है उसका भी स्वरूप नहीं समझा। हमने क्या किया? देखा देखी हुंडावसर्पणी काल में जीव देखा देखी धर्म करने वाले होते हैं और अन्य टाइम में जीव देखा देखी धर्म नहीं करते। कैसे करते? समझ समझ कर, विचार कर करके करते, चिंतन करके करते, अनुसरण नहीं करते। अनुसरण करने पर अपने पास ग्रहित मिथ्यात्व का ग्रहण होता है। ग्रहित मिथ्या, मिथ्यात्व दो प्रकार का बताया महावीर भगवान ने, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से अपने साथ में है, ग्रहित मिथ्यात्व हम बाहर पहले देख लेते हैं। वो क्या कर रहा है? मुझे भी वही करना। और गलत सही विचार नहीं कर किया, उसको ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। जो बाहरी रूप से अनुसरण होता है गलत का, और वह धर्म के रूप में हमारे आचरण में आ जाता है, गलत ही धर्म, उसको कौन सा मिथ्यात्व कहेंगे? इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहेंगे। और अग्रहित मिथ्यात्व ये है कि उसको ग्रहण करने से पहले जो उसके पास ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, उस अज्ञान को ही अग्रहित मिथ्यात्व कहा है। वस्तु स्वरूप का पहचान नहीं करना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। अज्ञान को त्याग करने का प्रयत्न न करना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। जो अग्रहित मिथ्यात्व त्याग सकता है वही ग्रहित मिथ्यात्व त्याग सकता है। सुन रहे हैं ना? जो अग्रहित मिथ्यात्व अज्ञान को त्याग सकता है वही ग्रहित मिथ्यात्व को त्याग सकता है। अग्रहित मिथ्यात्व को त्यागा नहीं और ग्रहित मिथ्यात्व को समझा नहीं, समझे बिना ही उसको त्याग दिया और जो सही है उसको ग्रहण कर लिया और कर भी रहा है और अज्ञान दूर नहीं हुआ है, तो क्या वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा? सम्यक दृष्टि तो नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? अज्ञानी तो कहलाएगा। अज्ञान मिथ्या तो दूर नहीं हुआ और ग्रहित मिथ्या तो के कार्यों को केवल दूर किया है, तो सम्यक दृष्टि नहीं बना। सम्यक दृष्टि जीव तो वही माना जाता है जिसने अंतरंग के अज्ञान को भी दूर किया है और बहिरंग के दोषपूर्ण कार्य को भी दूर कर दिया है, वहां सम्यक्तो की उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्व दो प्रकार का, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व। दोनों का त्याग अनिवार्य है या एक का? दोनों का त्याग अनिवार्य है। दीपावली के दिन हम दीप को जो जलाते हैं वो केवल एक स्मृति का रूप है। स्मृति है वो। महावीर भगवान सुबह मोक्ष गए, शाम को उनके शिष्य गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान रूपी ज्योति को उन्होंने शाम को जलाया, बाहरी दीप को नहीं। मुनि महाराज दीप नहीं जलाते, असली दीप जलाते, असली ज्ञान दीप जलाते। ज्ञान दो प्रकार का, एक अल्प ज्ञान और एक पूर्ण ज्ञान, एक अधूरा ज्ञान और एक पूर्ण ज्ञान। जिस ज्ञान की ज्योति को शाम के वक्त गौतम गंधर ने जलाया था, वो ज्ञान कौन सा था? वो पूर्ण था, केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जलाया था। महावीर भगवान मोक्ष गए हैं इसलिए दीप जलाते हैं, ऐसा नहीं। ये महावीर के कारण से दीपावली प्रसिद्ध नहीं हुई, दीप जलाने की पद्धति, वो तो गौतम गंधर के कारण से प्रसिद्धि में आई। महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए थे, संसार एक अंधकार है, इस अंधकार से वो मुक्त हो गए। शरीर धारण करना जीवन का अंधकार है, कर्मों को बांधना ये जीवन का अंधकार है, इस अंधकार से वो मुक्त हो गए थे। सुबह दोनों का टाइम देखो कैसा है, गुरु और शिष्य का। सूर्योदय नहीं हुआ था, प्रकाश हुआ था, उसको कैसा काल बताते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरण अभी बाहर नहीं आए थे, आने को थे, थोड़ा अंधकार और कुछ प्रकाश मिश्रित, 6 बजे का टाइम। हाँ, पांव पटना बोलते हैं उसको। उस वक्त महावीर भगवान आघाती कर्मों को नाश करके उस पावापुरी के पाषाण खंड पर निर्वाण को प्राप्त कर लिए, मोक्ष के। उनके शिष्य पास में नहीं थे, गौतम आपका मरण होना हो और आपके बेटे बेटियां पास में हो तो आपकी क्या स्थिति होगी? आपको मरने नहीं देंगे, रोकेंगे वो। चिल्लाएंगे, पापा कहां जा रहे? गुरु ने पहले से संकेत दिया था, जब निर्वाण का समय आया तो शिष्य ने गुरु के पास जाकर के निवेदन किया, भगवान आप मोक्ष जाएंगे तो हम किसके चरणों में बैठ करके शंका समाधान करेंगे, हमारा क्या होगा? शंकाएं उत्पन्न हो गई तो हम किससे पूछे? आप तो जा रहे, कल का दिन हमारा क्या होगा? जब ऐसा पूछा तो महावीर भगवान ने एक ही बात में, एक शब्द में शिष्य को उत्तर दिया, हे गौतम प्रमाद मत करो। देखो शिष्य बहुत पूछ रहा है और गुरु एक सेंटेंस में उत्तर दे रहे हैं और दे के निकल गए। पावापुरी के पाषाण खंड की ओर जाकर के विराजमान हो गए और वहां से विहार करवा दिया महावीर भगवान ने। गौतम चले गए कहां? पास में गए थे कभी निर्वाण स्थान पर? गौतम गंधर्व को निर्वाण की प्राप्ति किस क्षेत्र से हुई? नवादा। नवादा, नवादा में थे वो। और वहां से बहुत दूरी पर है ये पावापुरी, वहां से सुबह प्रातः काल में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अमावस्या का दिन था, महावीर भगवान किस दिन मोक्ष गए? शुभ है क्या? शुभ है, अशुभ अमावस्या है और शुभ कैसे बोल रहे? कोई पसंद नहीं करता अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जाना चाहिए था। महावीर भगवान गलत गए। अमावस्या यदि शुभ है तो शादी क्यों नहीं करते आप? वो तो महावीर भगवान का दिन है, अमावस्या तो उनकी कब्जे में है। संसार का कोई भी काम अमावस्या का दिन व्यक्ति करना नहीं चाहता, और उस अमावस्या के दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ। क्या हमारे अच्छे काम के लिए ये तिथि और ये दिन, ये अमावस्या हमें रोक सकते? शनिवार के दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर कर लोगे तो मतलब बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मानसिकता यदि बन गई और चार लोगों को ऐसा करते हुए हमने देखा है, तो पहला पासून वो करते हैं इसलिए हम करते हैं, और वो क्यों करते हैं, वो पहले वालों को देख करके करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो भी पहले वालों को देख के करते हैं, ये एक परिपाटी चलती है, उसके आधार से हम चलते रहते हैं। आप विचार करिए थोड़ा सा अपने दिमाग से, दिन कभी शुभ अशुभ होते हैं क्या? तो अशुभ शुभ क्या होता है? कर्म, बिल्कुल ठीक है। महावीर भगवान कह के चले गए, किसी दिन को दोष नहीं दिया, ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है, ये मध्यम है, ये जघन्य है, ये उत्कृष्ट है, ये फलाना है, दिनों को संकेत के रूप में उन्होंने दोष निर्दोष नहीं कहा। तो शुभ अशुभ क्या है, कहां होते हैं, वो अपने अधीन है। जिसको हमने अपने अशुद्ध भावों से कमाया है, ग्रहण किया है, बांधा है, स्थाप किया है, संग्रह किया है, ये पदार्थ जो बाहर से अंदर आया है, अशुभ परिणामों के माध्यम से आया है, वो पुद्गल मटेरियल हमारे लिए अनिष्ट कर सकता है, वह अशुभ है। उसको कहते हैं कर्म। पाप कर्म और पुण्य कर्म दो ही जाति के कर्म हैं। पुण्य कर्मों को हमने अच्छे भावों से ग्रहण किया है, संग्रह किया है, और बुरे कर्मों को बुरे भावों से संग्रह किया है, ग्रहण किया है। अब जब भी हमारे जीवन की यात्रा चलती है और हमारे जीवन के यात्रा में शुभाशुभ घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं में उन्हीं का हाथ रहता है, दो का, पुण्य कर्म का, पाप कर्म का। कुछ अशुभ घटना घटी तो किससे हुआ है? अगर मान लो उस दिन अकस्मात अमावस्या का दिन था, बाद में याद आया आज कौन सा दिन है, अमावस्या, गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं रहा, ऐसा सोचता है क्या? नहीं। और ऐसा सोचना ये ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। गौतम गंधर्व ने जितना उनकी आयु रही, उम्र रहा, जीवन भर उन्होंने इसी का उपदेश दिया, और उनका उपदेश हमारे लिए सम्यक ज्ञान कहलाया। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को अपने बाती से स्पर्श कराते हैं और उनके ज्ञान से हमारा ज्ञान उद्दीप्त हुआ, हमारी बातें में वो ज्योति लग गई, हमने उनकी जो उनके दीप से अपने दीप को जलाया तो हमारा दीप सार्थक हो गया। और बुझे हुए इन्हीं दीपों को गुरु जलाते हैं और हमारे दीपों को जला करके भी चले गए थे। हम तो उस वक्त सभी सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से जल रहे थे लेकिन गौतम गंधर्व तो चले गए, मोक्ष चले गए। मोक्ष जाने से पहले केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनमें भी जो ज्योति पहले से सम्यक ज्ञान की ज्योति जल रही थी वह पर्याय से रूपांतरित को प्राप्त हो गई। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, चार ज्ञान उनके पास थे, चार दीप जल रहे थे केवल ज्ञान से पहले उनके आत्मा में। वो चारों सम्यक ज्ञान के दीप थे, चारों सम्यक ज्ञान के दीप थे, वो चारों जला करके भी बैठे थे ध्यान में। किस दिन सुबह महावीर भगवान मोक्ष गए और शाम को ध्यान में बैठे थे सामायिक में। चार दीप जल रहे थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, पांचवा कौन सा केवल ज्ञान। उस दीप को जला नहीं पाए थे और उस दीप को तब तक नहीं जला सकते जब तक कि ये दीप बुझेंगे नहीं। उस दीप को तब तक जला नहीं सकते जब तक इन दीपों का अभाव ना हो। केवल ज्ञान रूपी दीपक को जलाते ही ये दीपक चार बुझ जाते हैं और वो एक ज्योतिर्मय हो जाता है केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति को उन्होंने शाम को जलाया था, उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति की स्मृति में हम घृत के दीप को जलाते हैं दीपावली के दिन। समझ में आ गए ना क्यों जलाते हैं? किसी ने पूछ लिया क्यों जलाते हो, पहले पास उन पहले जलाते थे उन्हीं को मालूम, हम देखा देखी जलाते हैं। ऐसा नहीं, हर बात को पहला पास होना कब तक करते रहोगे। हम दीप को जलाते हैं गणधर परमेष्ठी को उद्देश्य बनाकर, शाम को ही जलाते हैं सुबह नहीं जलाते। देखो दीपावली के दिन आप पूजन जरूर करते हैं, आरती जरूर करते हैं, स्मृति के दीप महावीर भगवान के सामने आप नहीं जलाते, शाम को जलाते हैं। किनको उद्देश्य बना करके जला रहे आप? गौतम गंधर्व उनके शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त किए थे और उनके जीवन में शेष जितना अंधकार था वह अंधकार दूर हो गया पूरी तरह से और केवल ज्ञान की ज्योति उद्दीप्त हो गई। और उस केवल ज्ञान के माध्यम से महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात उस प्रकाश को इस धरती पर फैलाते रहे, केवल ज्ञान के माध्यम से उपदेश देते रहे भव्य जीवों को। और इस तरह से उस दीप के माध्यम से हमने लाभ उठाया था, उसके प्रकाश में रह करके अपनी बुझी हुई बाती को जलाया था। हमारे दीपक भी जल रहे थे, उनका दीपक तो जल ही रहा था। हमारे पास एक भी दीपक अनादिकाल से जला हुआ नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक सम्यक ज्ञान नहीं आता। और गौतम गंधर्व किसको दूर करते हैं? अज्ञान को दूर करते हैं। अज्ञान तिमिर अंधानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे अंतरंग दीप को जला करके चले जाते हैं, तो जब तक महावीर रहे और गौतम गंधर्व गुरु रहे तब तक इस धरती पर रहने वाले सभी समस्त भव्यात्माएं जो उनके उपदेश के संपर्क में आते थे उनका दीपक जल जाता था। एक बार भी उपदेश सुन ले ऐसे महान पुरुषों का तो श्रद्धा की बाती लग जाती थी। कौन सी बाती? एक बार उपदेश सुन ले, एक बार श्रद्धा आ जाती थी। किस तत्व पर? अहिंसा तत्व पर। किस तत्व पर? सम्यक ज्ञान के तत्व पर। किस तत्व पर? सम्यक दर्शन के तत्व पर। किस तत्व पर? सम्यक चारित्र के तत्व पर श्रद्धा जग जाती थी। यही सच्चा आचरण है, यही आचार विचार जीवात्मा को मोक्ष दिलाने वाला है। संसार से मुक्त होने का उपाय एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र वाला मार्ग। उसके प्रति यानी मार्ग के प्रति और मार्गी के प्रति जो श्रद्धा जगती है वो हमारी बाती है। और इस श्रद्धा के साथ साथ जो बाती हम उसमें डालते हैं, श्रद्धा की बाती डालते ही चुपचाप नहीं बैठते, क्या करते? उसमें फिर चारित्र रूपी थोड़ा सा घी, ज्यादा नहीं है, गरीब है, एक चम्मच भर घी डालते हैं और ये घी जो है ये हमारा चारित्र, बाती जो है वो श्रद्धा। और उनसे जो हमने पाया, अपने अज्ञान रूपी अंधकार को हटाया, उसके उस उपदेश के माध्यम से हमने अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति का स्पर्श, उस ज्ञान के माध्यम से इस ज्ञान को उद्दीप्त किया। श्रद्धा रूपी बाती और सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति और सम्यक चारित्र रूपी आधी चम्मच घी। आधी चम्मच घी का मतलब, आधी चम्मच घी का मतलब आठ मूल गुण, महाव्रत नहीं, प्रतिमा नहीं, वो तो बहुत कठिन है। और गरीबों के पास ये महाव्रत कहां से आएंगे, ये प्रतिमाएं कहां से आएंगी? हमने आठ मूल गुण के साथ साथ सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और सम्यक दर्शन उसी को प्राप्त होता है जिसके पास आठ मूल गुण हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले आठ मूल गुण पूर्वक ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति बताई है, तो पहले हमने उपदेश सुन लिया, सुनते ही इन तीनों को जगाया। आत्मा क्या पात्र है, उसको क्या बोलते जिसमें घी डाला जाता है, पंक्ति, 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 आत्मा पंक्ति है। उसमें हमने उनके माध्यम से तीन चीजें पाली, आठ मूल गुणों का उपदेश मिला, उसको हमने तेल बना करके थोड़ा सा आधा चम्मच डाल दिया। उनसे हमने बाती ले ली, क्योंकि वो अगर नहीं होती तो हमारी श्रद्धा जगती न थी। बाती उन्हीं की देन है, घी भी उन्हीं की देन है, और जो ज्ञान आया उन्हीं की देन है। उपदेश मिला, ज्ञान जगा, घी उनकी, बाती उनकी, ज्योति उनकी, हमारे पास क्या था? पंतिवर था। उसको ऐसा भी करो तो कुछ गिरता नहीं था उसमें से, सब खाली था। उल्टा सीधा भी करो, साफ सुथरा। भगवान ने कहा ये क्या है, ये खाली क्यों है? मनाओ दीपावली, आ जाओ बैठो उपदेश में, तेल डालो उसमें, बैठो उपदेश में, तेल डालो उसमें, ना और किस में, तेल डालो इसमें, बाती लगाओ उसमें, और जो कहा है उस समय ज्ञान रूपी ज्योति का स्पर्श बाती से करोगे, प्रकाश मिलेगा। दीप स्वयं प्रकाशित होता है और पर को भी प्रकाशित करता है, और उस ज्योति के लिए बाती और तेल ये दोनों सहायक होते हैं। देखो कैसा है, दीप व आरती जल रही है, इन तीनों का आधार पंक्ति है। कितना संभालते पंक्ति को, गिरने नहीं देते, और जलाने के बाद हवा अगर चल रही है दोनों हाथ लगाते हैं, बुझने देते? चार महीने हो गए तुम्हारी बाती को ज्योति देते देते, तूफान आना संभव है, हाँ हवा चलना संभव है, लेकिन उस समय क्या करना, थोड़ा सा हाथ चुपचाप बैठोगे दीपक बुझ जाएगा, चिंता करना, बहुत मेहनत से हमने जलाई है, बहुत मेहनत से ये दीपक जल गया, सम्यक ज्ञान का दीपक की ज्योति अब जल गई है, ये हमने नहीं जलाया है, ये ज्योति वही है जो गौतम गंधर्व की परंपरा से आती 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 कुंद कुंद शांति सागर, ज्ञान सागर और फिर विद्या सागर, और वही ज्योति हमने पकड़ करके तुम लोगों को। चार महीने तक लगातार तुमने दीपावली मनाया है, अब क्या दीपावली मना सकते? नकली दीप को जलाने से दीपावली नहीं होती, असली दीपावली मना चुके हैं आप, ये है असली दीपावली, जिसमें गुरु के द्वारा दिया गया घृत चारित्र का, आठ मूल गुण का फार्म प्रामाणिक है, प्रमाण है, हमने फाइल किया है। मुझे भी तो खुशी चाहिए कुछ, इतनी मेहनत की, कितने दीप जले, मैं गौतम गंधर्व तक संकेत भेजूंगा, भगवान आप मोक्ष गए, हे भगवान आप मोक्ष गए, लेकिन अभी भी आपके दीप, आपका दीप बुझा नहीं है, लगातार चल रहा है, और आज हमने ये 300 दीप यहाँ जलाए, तो उनको कैसे लगेगा 300 जल गए, 300 जल गए। अब ये असली दीप हैं जो 300 जल गए, इसमें आठ मूल गुण रूपी घी डाला है, रेशम का त्याग, ये क्या है, दिया कि नहीं दिया, तेल डाला है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, श्रद्धा की बाती के बिना वह उसमें तेल डालने के भाव नहीं आए थे। श्रद्धा की बाती लगी थी, इसलिए उस बाती को देख करके ही इस बाती का सदुपयोग करना है। और ये बाती वैसे ही पंक्ति में खाली रखेंगे तो क्या फायदा, इसके लिए एक तेल भी डालना पड़ेगा। यही सोच करके आपने 8 मूल गुण धारण कर लिया और वो 28 नियमावली शक्त्यानुसार भरा है, तो वह कहलाता है आधी चम्मच घी। ज्यादा थोड़ी है वो, भली 6,500 की भली क्यों ना हो, लेकिन आधी चम्मच ही घी है वो। प्रतिमा लेंगे तो 50% घी, महाव्रत लेंगे 100% घी, पंक्ति में भरा हुआ घी। हमारे पंक्ति तो हमेशा भरी रहती घी से, आपकी पंक्ति में घी अगर कम पड़े तो और आना, दूसरा खाली फार्म लेकर बिल्कुल हम घी डालेंगे, भरेंगे उसको, उसको भरेंगे, बुझने नहीं देंगे। इधर खत्म हो रहा है, मैं देखता रहूंगा खत्म हो रहा है क्या, और जरा डाल के जाऊंगा। गुरु दाता है, पंक्ति आपकी है, पंक्ति अनादिकाल से हाथ में है, पर उसमें क्या नहीं था, खाली था। पंक्ति है और अमावस्या के अंधेरे में खाली पंक्ति को लेकर महावीर भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। कहां है भगवान, कहां है भगवान, किधर गए, किधर से मोक्ष गए, इसको जलाए बिना महावीर भगवान दिखेंगे नहीं। आप अपने दीपक को जलाइए, महावीर भगवान दिखेंगे। आप अपने दीपक को जलाइए, गौतम गंधर्व दिखेंगे। आप अपने दीपक को जलाइए, शांति सागर दिखेंगे। आप अपने दीपक को जलाइए, ये दीपक का जो प्रकाश है, तेल है, ये किसकी महिमा है, वो आत्मा उस महिमा के भीतर सभी दिखेंगे। आदिनाथ दिखेंगे उसको जलाओगे तो, क्योंकि आदिनाथ ने जिस दीपक को जलाया था वही दीपक ये है ना। इन दोनों दीपकों में कोई अंतर नहीं, उनको जिस दीपक को जलाना पड़ा था वही दीपक आपने जलाया है, और ये उन्हीं की परंपरा का दीपक है, ये असली दीपक है। बाहर के दीप को जला करके दीपावली मनाना, ये कोई असली दीपावली मनाने का ढंग नहीं है। अगर अंदर में दीप जल गए हैं तो बाहर के दीपों को जलाना कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं, पर गुरु स्मरण में आते हैं इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति ये कहती है आज दीपावली है, किस रूप में मनाऊं उस गुरु को। तो भक्तों ने क्या कर दिया, बाहर की पंक्ति लाए, बाहर का ही बाती लाए, बाहर का ही घृत लाए, इन तीनों का मिलान कर दिया और उसको रत्नत्रय का प्रतीक माना। हे गौतम गुरुवर, तुमने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की गंगा बहाई थी, प्रकाश का स्तंभ तुमने स्थाई कर दिया था, वो आज भी हमारे आचरण में, हमारे ज्ञान में, हमारी श्रद्धा में जीवित है। और तुमने ऐसा दीप, असली दीप जो दिया है वो आपका ही है, इस स्मृति के रूप में मैं बाहर में ये दीप प्रतीक के रूप में रख रहा हूं, वह आज का ही दिन है जो आप केवल ज्ञानी बने थे और भव्य जीवों का आपने कल्याण किया था। अब मैं इस दीप को ही लेकर के, क्योंकि ये कोई बड़ा दीप नहीं, इसका प्रकाश भी ज्यादा नहीं, टिमटिमाता दीप, कहीं जोर से हवा भी चल जाए तो बुझ सकती है, मैं लेकिन हाथ लगा करके चलूंगा, बुझने नहीं दूंगा। बुझने नहीं दूंगा, यही तो संकल्प है। उस फॉर्म में हमने ये संकल्प लिया है, इस दीपक को बुझने नहीं देंगे। यह हाथ है, संकल्प रूपी हाथ को हमने ऐसा किया है, बुझने नहीं देंगे और ये जलता रहेगा। इसमें तरक्की होगी लेकिन इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। एक बार छोड़ दिया है, एक बार हमने अपने आत्मा के दीप को जलाया है, अब इसको बुझने नहीं देंगे। उसमें अब आगामी समय में नया फार्म, नया घी, ताजा घी, सुगंधित घी, अटपहरी घी, अटपटी घी नहीं, अटपहरी, ताजा घी और डालेंगे तो प्रतिमाधारी बनेंगे। प्रतिमाधारी बनने के बाद उसकी मात्रा और बढ़ेगी, कितने 40% घी, 40% घी, और थोड़ा एक स्टेज और बढ़ेंगे, शुल्लक ऐलक या आर्य का 50% घी, एक कदम और बढ़ेंगे तो मुनि अवस्था 100% घी, सदा भरा रहे ये भावना भाव, मेरी पंक्ति अधूरी न रहे, आदि न रहे, सदा घी से, सुगंधित घी से भरा रहे और दुनिया के प्रदूषण को दूर करता रहे। उस घी से निकलने वाली सुगंधि से वातावरण का प्रदूषण जैसे दूर होता है, वैसा सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण करने वाले हमारे जीवन में ये दोनों तीनों की सुगंधि अगर फूटने लग जाए तो फिर लोगों का कल्याण होगा क्या? कल्याण है, कल्याण होगा। लोग परंपरावादी हैं, पहला पासनवादी है, आपको देखेंगे आपका भी काफी मारेंगे। आप सम्यक दृष्टि हैं तो वो भी सम्यक दृष्टि बनने को तैयार हो जाते हैं, मना करोगे? उनकी आदत है, पहला पासुन, एक दो पीढ़ी निकल गई और घर में सभी सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गए, पहले से ही आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घर में दिखाई दिया तो फिर वो भी एक परंपरा बनती है, वो भी एक कुलाचार बनता है, उच्च कुल कहलाता है। उच्च कुल में तीन का आचरण होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीन का आचरण होता है। अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक का आचरण प्रत्येक घर घर में होना चाहिए और ये परंपरा चलनी चाहिए और इसको कहना चाहिए पहले पासुन, पहले पासुन, पहले पासुन, ये सच्ची बात है, ये सच्चा मार्ग है। मिथ्या मार्ग पहला पासुन मार्ग वो ठीक नहीं, पहला पासुन ले लो कोई बात नहीं, लेकिन इसको परंपरा बनाओ। सम्यक परंपरा का नाम है धर्म और मिथ्या परंपरा का नाम है अधर्म, पाप, दुर्मार्ग, अंधकार का मार्ग, भटकने का मार्ग, अमावस्या का दिन है वो, अशुभ है ना दिन, शुभ है। अब आपके जीवन में कभी अमावस्या न आए ऐसा जीवन जियो, जिंदगी में कभी अमावस्या न आए ऐसा जीवन जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता है? और महावीर भगवान अमावस्या के दिन मोक्ष इसलिए गए कि उनको ये संकेत देना था कि जीवन में जो अमावस्या के दिन आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो असली अमावस्या नहीं, जो भीतर में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र पल रहा है भव्यात्मा के भीतर, वो सबसे बड़ा अमावस्या है। वो कटता ही नहीं, अमावस्या कभी खत्म होता ही नहीं। अनादिकाल से हमने जो जीवन जिया है मिथ्यात्व के साथ जिया है कि नहीं, वो दिन कभी बदला? वो मिथ्यात्व के दिन ही तो अमावस्या के दिन थे, और उन दिनों को मिलाकर के अनंत काल भी इकट्ठा करके रखो तो वो अमावस्या ही है, उसमें एक दिन भी पूर्णिमा का दिन नहीं आया। बताओ, आपने जिस दीपक को जलाया है वो पूर्णिमा को दर्शाने वाला दिन नहीं, वो दीपक नहीं है, वो तो किसी कोने में प्रकाशित करने वाला दीपक है। पूर्णिमा का दीपक तो जलाया गौतम गंधर्व ने, देखो कितना फर्क है। और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। पंद्रह दिन होते, आप देखो प्रतिमाएं कितनी? 11। और ये 8 मूल गुण प्रतिमा कहलाती है क्या? 8 मूल गुण प्रतिमा कहलाता है क्या? नहीं, ये श्रावक का प्रथम स्टेज है, पाक्षिक श्रावक, धर्म के पक्ष में आ चुका है, अधर्म के पक्ष को त्याग दिया है, पाक्षिक श्रावक बना। वो 11 प्रतिमाएं और ये प्रथम स्टेज, ये 12 हो गए, 13, 14, 15वां जो दिन होता है वो पूर्णिमा का दिन होता है, और उधर पहले का जो दिन था वो अमावस्या का दिन था। प्रतिमाधारी बनना दूसरी स्टेज, उधर 12 हो गए, 11 प्रतिमा और 8 मूल गुण, ये 12 स्थान बन गए। और प्रतिमा के बाद क्या बनते हैं? मुनि बनते हैं। मुनि बन गए, कितने स्थान हो गए? 13 स्थान हो गए। मुनि बनने मात्र से काम नहीं चलता, ध्यान ये अलग वस्तु है, ये 14वां स्टेज है। 14वां स्टेज के उपरांत ही पूर्णिमा आती है। गौतम गंधर्व को ध्यान के पश्चात केवल ज्ञान हुआ क्या? ध्यान से पहले हुआ क्या? मुनि बनने मात्र से हुआ? ऐसा तो किसी को नहीं होता है। ध्यान अवस्था में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और उन्होंने उपदेश देना त्याग दिया, इधर उधर घूमना, प्रवृत्ति आहार के लिए जाना, सब कुछ त्याग दिया, ध्यान का आश्रय ले लिया। ये 14वां स्टेज है। इस 14वें स्टेज में अंतर मुहूर्त तक ठहर जाए शुद्धोपयोग में, शुक्ल ध्यान में अंतर मुहूर्त तक अगर स्थित हो गए तो उसके पश्चात का जो समय है, क्षण है, वो है पूर्णिमा। अब यह समझ, पूर्णिमा क्या है? मूल गुण से लेकर उसके पीछे है अमावस्या। मूल गुण ये प्रतिपदा कहते क्या? हाँ, प्रतिपदा। उस दिन चांद जरा खुलता है लेकिन दिखाई नहीं देता, खुलने को है, दूज के दिन दिखेगा, खुला है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होगा, दूज के दिन दूज का चांद दिखता है, दिखना प्रारंभ होता है। पहली स्टेज पर दिखता ही नहीं, पहली स्टेज पर प्रतिपदा के दिन चांद का नाम लेना भी ना के बराबर है। तो प्रतिपदा का चांद जितना खुला है उतना ही 8 मूल गुणों का महत्व है। पाप छोड़ा, स्थूल पाप छोड़ा, रेशम की साड़ी त्यागी, स्थूल पाप छोड़ा,
प्रतिपदा जैसी बात है। प्रतिपदा का जो प्रकाश है चांद का, बस उतना प्रकाश आपके जीवन में जग गया। इसके पश्चात एक प्रतिमा लेंगे तो दूध का चांद का प्रकाश आंखों से दिखेगा। दिखना प्रारंभ होता है चारित्र यदि कहीं तो प्रतिमा से। प्रतिमा वाला चारित्र ही असली चारित्र है, बाकी उसको तो चारित्र कहा ही नहीं। यूं कह सकते हैं कि दीपक के उस बाती को केवल घी में डो करके निकाला है और लगाया है, उतना ही महत्व है। आधा चम्मच भी पीना बहुत हो जाएगा। आधी चम्मच घी डाला है, कुछ नहीं डाला, दीपक को केवल गीली कर दी, गीला कर दिया, इसको बाती को केवल गीला करके पंक्ति में रख दिया है, जला दिया, जलेगा जरूर, प्रकाश भी मिलेगा, कितने समय के लिए, इससे काम नहीं चलने वाला। प्रतिमा से काम चलने वाला, प्रतिमा को, प्रतिमा रूपी घी को उसमें डालोगे तो कुछ समय तक जलेगा तो प्रकाश दिखने में आएगा, कुछ समय तक रहेगा तो आने वाले आकर के देखने तक वो जलता रहेगा, नहीं तो केवल बाती ही गीला करके रख दिया है तो लोग देखने के लिए आएंगे ना, वो देखने के लिए आने वाले थे और तब तक आपका दीपक। आठ मूल गुणों का महत्व इतना नहीं जितना प्रतिमा और महाव्रत। ये 11 प्रतिमाएं हैं, इन 11 प्रतिमाओं के आपके अमावस्या का चांद, प्रतिपदा, फिर प्रतिपदा के दूध, दूध के दिन जरा 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 प्रकाश बढ़ता जाएगा, खुलता जाएगा, उद्दीप्त होता जाएगा। और जिस दिन मुनि बनेंगे उस दिन वो त्रयोदशी माना जाएगा। हाँ, धन त्रयोदशी। अच्छा, वो धन त्रयोदशी और उसका नाम धन त्रयोदशी भी है, धन्य है,
धन्य हो तो
धन्य का धन्य त्रयोदशी था और धन त्रयोदशी नाम पड़ गया, अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश बोलते बोलते। हाँ, धन्य त्रयोदशी, उसका ना असली नाम तो धन्य त्रयोदशी, धन त्रयोदशी इसलिए कहा कि त्रयोदशी के दिन महावीर भगवान थे तो अरहंत अवस्था में थे, अभी निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ध्यानावस्था में गए नहीं थे। जब ध्यानावस्था में गए आघाती कर्म नष्ट हो गए और उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। लेकिन उल्टा हो गया सब, तिथि के उल्टा, अमावस्या से लेकर बढ़ते 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 पूर्णिमा के दिन मोक्ष होना चाहिए था, इन्होंने क्या कर दिया, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ रहे हैं। बाहर तो अमावस्या आ रही है और अंतरंग में पूर्णिमा आ रही है, बताओ भगवान उल्टे रास्ते चलते हैं और अपन क्या करते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ते हैं, बाहर भी बढ़ते हैं अंतरंग में नहीं, अंतरंग में उल्टा बढ़ते हैं। अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसके बिना ही हमारा जीवन जा रहा है तो हम किधर बढ़ रहे हैं, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर। पूर्णिमा तो अपने जीवन में हमने देखा ही नहीं, अमावस्या ही अमावस्या है, बीच के दिनों को भी नहीं देखा, कुछ है ही नहीं। दीपावली को मनाना है अपने जीवन में, सच्ची दीपावली को मनाना। दीपावली का अर्थ होता है जिस दिन गुरु ने अपने जीवन को पूर्णिमा बनाया था, अमावस्या को भी पूर्णिमा बना दिया, भीतर से पूर्णिमा हो गई और बाहर से अमावस्या, और उनके गुरु महावीर भगवान सुबह निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। अंधकार था, शाम हो गई, रात बढ़ती जा रही है और इनको गुरु दिख नहीं रहे हैं। खबर तो मिल गई, महावीर भगवान मोक्ष गए, महावीर भगवान मोक्ष गए, गए गए निर्वाण पूजा करने के लिए। देव लोग आए, पावापुरी में निर्वाण महोत्सव मनाया। गौतम गंधर्व को महावीर भगवान पुनः देखने को नहीं मिले। अब कहां ढूंढे, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, ऊपर ढूंढे, नीचे ढूंढे, किधर ढूंढे। गौतम गंधर्व को तुरंत याद आया, तुम अपने गुरु को ढूंढना चाहते हो गौतम, प्रमाद मत करो। बस ये सूत्र याद आया और वे गुरु के सूत्र को स्मरण में करते ही गुरु तभी दिखेंगे मुझे जब मैं प्रमाद छोड़ूंगा। सब छोड़ के बैठ गए, उनके निर्वाण को सुनते ही ये सब छोड़ के बैठ गए। कहां बैठ गए, अपने आप में, ध्यान में बैठ गए। दिन भर बैठे रहे सामायिक में। प्रमाद मत करो कहा है गुरु का आदेश, प्रमाद नहीं करूंगा, बाहर आऊंगा ही नहीं। छठे गुण स्थान में आना प्रमाद है, सप्तम गुण स्थान में रहना अप्रमाद है। तो गुरु क्या कहते हैं, अप्रमत्त गुण स्थानों में रहो, नीचे मत आओ, ऊपर ऊपर रहो, नीचे मत आना। गुरु के उस सूत्र को लेकर के गौतम गंधर्व शाम तक उस सूत्र को जीवंत सिद्ध किया, जीवित कर दिया उसको अपने जीवन में। और अप्रमत्त होकर के जैसे ही बैठ गए, इधर बाहर में अंधकार बढ़ रहा है, भीतर में प्रकाश बढ़ रहा है और वो क्षपक श्रेणी के अंदर आरूढ़ हो गए। प्रकाश भीतर बढ़ता गया, बढ़ता गया, आठवें गुण स्थान पर गए, नौवे में गए, दसवें में गए, फिर किधर गए, हाँ मालूम है ना, नहीं तो इधर नीचे आ जाते हैं, मालूम पड़ गया, बहुत कुछ मालूम पड़ रहा। ग्यारहवीं में आते तो धड़ाम से नीचे आते, नहीं जहां से पैर फिसल जाते हैं उसमें नहीं जाना, उस मार्ग पर नहीं जाना। ग्यारहवीं में नहीं गए, वो सीधा बारहवीं में गए और बारहवीं में ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रकाश तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इतना उज्जवल प्रकाश भीतर कैसे दिख रहा है। आनंद की अनुभूति, उस प्रकाश की अनुभूति, उस शुद्धोपयोग की अनुभूति करते करते अंतर मुहूर्त तक जब वो ठहर गए, उनके पास जो खाती कर्म थे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, तीन ही बचे थे। एक को तो उन्होंने दसवें गुण स्थान में रास्ते में आते आते ही उसको नष्ट कर दिया था। तीन बचे थे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। नष्ट किसको किया था, मौनी कर्म को। ये तीन बचे थे और वो तीन बचे हैं या नहीं बचे हैं ये भी उनको पता नहीं। उनको केवल अपने अंतरंग के प्रकाश में आनंद लुटाना था, प्रमाद को छोड़ना था, गुरु के कहे हुए वचनों को जीवन में उतारना था। बस उतार करके वो साक्षात बैठ गए थे और जैसे ही बैठे रहे, अंतर्मूर्त के भीतर वह प्रकाश पूर्णिमा के रूप में परिवर्तित हो गया। भीतर पूर्णिमा आई, आंख खोल करके देखा बाहर अंधकार है और भीतर प्रकाश ही प्रकाश, उजाला है। आत्मा के भीतर इतना बड़ा उजाला है, वह पूर्णिमा का उजाला
अगर एक बार जग गया तो वो पूर्णिमा कभी समाप्त नहीं होती, अनंत काल के लिए उस पूर्णिमा की अनुभूति करता रहता है जीव। ऐसा है वो, सबके पास है वो, लेकिन उस ओर यात्रा करनी पड़ेगी ना। जैसे गौतम गंधर्व यात्रा कर गए, ऐसी यात्रा तो आप लोगों की प्रारंभ हो चुकी है। हाँ, आपकी पंक्ति में तेल भी है, घृत भी है, बाती भी है और ज्योति भी है। तेल कम होने से टिमटिमाता जीरो बल्ब जैसे हमारा दीपक अभी जलना प्रारंभ हो गया है। आठ मूल गुण का आरती कितनी बड़ी होगी, वो छोटी है। बस इसी को लेकर के हम यात्रा कर रहे हैं। नीचे पड़े हुए वस्तु भी नहीं दिखते ठीक से, उसको ढूंढना हो तो पास ले जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर सुई गिरी है। महाव्रत के दीपक के आसपास दूर तक के पड़े हुए सारे पदार्थ दिखते, लेकिन आठ मूल गुण के दीपक के आसपास में पदार्थ नहीं दिखते। प्रतिपदा का चांद कितना छोटा, दूज का चांद थोड़ा सा बड़ा हुआ, तीज का उससे ज्यादा, चौथ का उससे ज्यादा, 11 प्रतिमाएं ये अंतरंग के प्रकाश की प्रतिमाएं। जितनी प्रतिमा आप चढ़ेंगे उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा भीतर। जो आत्मा को प्रकाशित करके आत्मा की यात्रा करता है वह सही दीपावली मनाता है अपने जीवन में। क्या मनाना है ऐसी दीपावली? मनाना है, अवश्य मनाना है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करना, मिथ्या तो त्याग। गौतम ने, महावीर भगवान ने गौतम को कहा था प्रमाद मत करो। फिर श्रावकों ने भी पूछा होगा, हे गुरुवर हमको क्या करना चाहिए? हाँ? नहीं है, आप लोगों को ऐसा नहीं कहा प्रमाद मत करो। प्रमाद बहुत बड़ी चीज होती है, तो छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में रहने वालों को प्रमाद मत करो ऐसा उपदेश हो सकता है, लेकिन श्रावक को प्रमाद मत करो ऐसा ना। प्रमाद उसका जीवन है, लेकिन उसके जीवन में सबसे पहले प्रथम किरण निकलने के लिए वो कहते हैं अमावस्या में मत रहो। मिथ्यात्व अमावस्या है, जीवन में अमावस्या का, अमावस्या के दिन की अनुभूति मत करो। मिथ्यात्व का जीवन अंधकार का जीवन है और सम्यक्त्व का जीवन ही प्रकाश का जीवन है। श्रावकों को ये कहा और अपन को उसका अनुसरण करना क्या नहीं करना? करना है ना। हे गुरुवर गौतम गंधर्व, आपने ऐसा उपदेश अपने शिष्य गौतम को तो प्रमाद मत करो कहा, और हमको आपने अमावस्या के दिन की अनुभूति मत करना जीवन में। इसका मतलब क्या था? मिथ्या तो मत करना, कम से कम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को धारण कर, उसमें आठ मूल गुणों का पालन कर, छोटी सी पंक्ति को जलाए रखना, ये कहा। और इस दीपावली के दिन वही करना, बाहर के दीप को ही जलाना केवल काम नहीं है, भीतर के दीपक को जला करके रखना। भीतर में दीप नहीं जलाया और बाहर में दीप जलाने के लिए हजार दीप करोड़ दीप भी जलाओ, अगर भीतर का दीप नहीं जला बेकार है दीपावली मनाना। ऐसे बाहर की दीपावली मनाना बेकार है। और किसको स्मृति के रूप में हम जला रहे? गौतम गंधर्व की स्मृति में। और गौतम गंधर्व ने जो कहा है उसका तो पालन नहीं किया, और उनके सामने एक दीप जला कर हटाओ तुम्हारे दीप, गौतम गंधर्व कहेंगे मेरे सामने इसको क्यों ला रहे, तुम्हारे असली दीप को जला करके यहाँ फार्म रखो फार्म वो असली दीप है, वो असली दीप है, ये कहेंगे वो। आपका असली दीप फार्म है जो भरा है, लगभग 250-300 गिना तो नहीं है, 250-300 फार्म भरा है लोगों ने। बहुत संख्यक लोगों ने मिथ्यात्व का त्याग किया है, मिथ्यात्व का त्याग किया है, यानी मिथ्यात्व का त्याग अमावस्या का त्याग है। और आपके जीवन में लौट कर कभी अमावस्या आने वाली नहीं है। आप इस प्रकाश के माध्यम से वही प्रकाश को पाएंगे जिस दीपावली के दिन गौतम गंधर्व ने पूर्णिमा के प्रकाश को पाया था, वही प्रकाश आपके जीवन में आएगा। आशा रखो, श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, वो भी दिन आएगा जो दिन गौतम गंधर्व के जीवन में आया था, ऐसा ही दिन मेरे जीवन में आएगा, मैं भी परमात्मा बनूंगा, मैं भी केवल ज्ञानी बनूंगा, और यह दीप छोटा दीप ही मोटा दीप बनेगा, इसमें जैसे जैसे तेल बढ़ेगा घृत बढ़ेगा वैसे वैसे बाती को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। क्या वही रखोगे? पंक्ति इतनी बड़ी पंक्ति है और बाती बिल्कुल पतली नहीं, बाती को भी जैसे जैसे तेल बढ़ेगा उसके लायक एडजस्टमेंट तो चाहिए ना, मैच तो चाहिए। पंक्ति इतनी बड़ी है तो तेल उसमें बहुत रहेगा, और वो उतना तेल है तो उसके लायक बाती भी रहेगी, और बाती बड़ी रहेगी तो ज्योति भी बड़ी रहेगी। इसको बढ़ाते जाना, बाती भी चेंज करना, तेल भी बढ़ाना, और ये दोनों बढ़ गए तो ज्योति अपने आप बढ़ती ही जाएगी। ऐसा दिन है, टाइम हो गया 5:30, कुछ जानकारी देना है क्या? पिंची परिवर्तन का समय आ रहा है, यहाँ अपने संग में पिंची परिवर्तन का कोई सवाल नहीं होता, होता है सवाल लेकिन इसका सवाल नहीं होता, पैसे का सवाल नहीं, सवाल ये है कि आप संयमी बनेंगे क्या नहीं, ये सवाल है, संयम का सवाल है। और जो संयम, संयम का मतलब ये है कि अभी तक तो 28 नियम तो भर दिया है, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन इसके पीछे एक नियम और, एक ही नियम, क्या? इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य व्रत। पीछे नई पीछी भेंट करने के लिए भी सवाल, पुरानी पीछे आपको चाहिए हो हम देंगे, लेकिन सवाल कौन लेगा? सवाल पनवार बोलो
देने से कितने लोग,
सवाल लगेगा, फार्म मिलेगा, उसका भी फार्म मिलेगा। आप कितने समय के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे? एक महीने के अंदर कितने दिवस के लिए आप ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे? अभी तो उस फार्म में तो इतना भरा है, अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन आदि में हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ये तो 8 मूल गुणों के लिए अनिवार्य बात थी। थोड़ा सा ही घी वाली बात थी, इतनी सी घी वाली बात थी, अब ये चाहिए ना घर में, ये चाहिए, ये घर में रहेगा तो एक न एक दिन पूर्णिमा गौतम गंधर्व की तरह आपके घर में आएगा। पुराने पिछे जिसको चाहिए उनको उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा, आजीवन आजीवन। नहीं, जो भी लेंगे आजीवन लेंगे तो उनका नंबर आ सकता है, और नंबर उम्र के हिसाब से भी देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल,
सब का सवाल है ना, उम्र की सवाल,
सवाल ऐसी थोड़ी होता है, उम्र भी देखी जाएगी। छोटी उम्र वाला आजीवन ले रहा है, इनका सवाल ज्यादा रहेगा। क्या वृद्धावस्था वाला आजीवन ले रहा है, इनका सवाल रहेगा। उम्र भी देखी जाती है, इसमें छोटी उम्र वाले का नंबर अगर लग गया तो उनका भाग्य है। अब देखेंगे किसका क्या नंबर है, किसका भाग्य है।
पीछे देना होता है, जो नवीन पीछे दावत ही देते हैं तो देने वाले भी सही में रहेंगे। जो महाराज जी को पीछे देना है उसमें जितने भी लोग हो सकता है कि जिनको 15 दिन का लेना हो, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, यानी महीने में 28 दिन तक संयम से रहेंगे, 2 दिन की छूट हर महीने में ऐसा रहेगा। या जिनको पक्ष और मास का 15-15 दिन हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे हर महीने में 15 दिन ब्रह्मचर्य से, अन्यथा अन्य छूट। इस तरह से जिनको थोड़ा थोड़ा एक कदम बढ़ाना होता है, ऐसे लोगों के द्वारा महाराज जी को पिंची अर्पण कराएंगे। देने के लिए भी संयमी, और जो पुराने पिंची है उसे लेने के लिए तो विशेष संयमी चाहिए। इनमें से जो विशेष दिखाई देंगे महाराज जी को, जो उचित लगेगा, ज्यादा व्रत ले रहे हैं, लगे जल्दी से जल्दी जिनको आतुरता है मोक्ष मार्ग में बढ़ने की, ऐसे लोगों को विशेष रूप से बड़े महाराज जी की और ऋषभ सागर की 2 पीछी दी जाएगी। और दोनों महाराज जी को नई पीछी अर्पण करने के लिए जितने भी लोग हो सकते हैं उसमें ये रहेगा कि सभी संयम लेंगे, मुख्य उसमें ब्रह्मचर्य का, बाकी जो महाराज जी ने फॉर्म दिया है उसमें तो नियम जैसा जैसा आपको भरना वो भर देना। और उससे और चर्चा आदि करना है तो महाराज जी लोग है या हम लोग है चर्चा कर सकते हैं। मात्र यह संयमोत्सव रहेगा, अभी तो ज्ञानोत्सव अपना हुआ, आखिरी जो उत्सव अपना रहेगा यह संयमोत्सव रहेगा। संयम के दिन सिर्फ संयमी को ही आगे बुलाया जाएगा, आगे बढ़ाएंगे, संयमियों की ही स्तुति प्रशंसा रहेगी, अन्य लोग सिर्फ दर्शक ही रहेंगे, ताड़ियां बजाएंगे, बाकी उनको यहाँ बुलाया नहीं जाएगा। इसलिए यह पीछी परिवर्तन जिनको चाहिए संयम लेना है, एक ऐसा मौका आया, अपना आधी उम्र गई या शादी के बाद अपने बच्चे स्कूल जाने लगे तो अपने को धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। तीर्थ चलने के लिए 1-2 संतान जन्म दे दिया तो तीर्थ वह चलाएगा, अब अपने को स्वतः तीर्थ बनना है। इसलिए जिनको भी है तो नंबर लगना चाहिए, एक भी परिवार में एक भी दंपति न बचे। जितना बन सकता है कोई दिक्कत नहीं, जितना आपसे बनेगा उतना ही भर देना, कोई इसमें शर्त नहीं है। क्योंकि सभी संयमी दिखे, महाराज जी के जाते जाते जाने से पहले हर घर में यहाँ संयमी है ये अपने को होना है। महाराज जी का मतलब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, महाराज जी ने वर्षायोग किया, चातुर्मास किया, उसका फल संयम होता। ज्ञान का फल उपेक्षा है, कितने लोग उस मार्ग पर बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। 2-3 वर्ष की शादी हुई हो, 1-2 बच्चे हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। जितना आपसे बनेगा उतना ही नियम, खाली हाथ कोई रहेगा नहीं पीछी परिवर्तन के दिन, उसकी तारीख देख करके जल्दी अपन वो करें जाहिर करेंगे। तारीख अभी रखा नहीं, देख करके जाहिर करेंगे। हो गया जिनवानी।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत ज्योति तलवानी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीशन तक हम विषयांध रहे, अब तक हम विषयांध रहे।
चतुर्मासाचे जे कळस ज्यांनी ज्यांनी घेतले त्यांचा सुद्धा तो कार्यक्रम पिंची परिवर्तन दिवशी होईल, त्यांना त्यांचे त्यांना कळस दिले जातील। त्याचप्रमाणे आजचे मिष्टान्न भवन ढवळी परिवारांच्या तर्फे आहे, तरी सर्वांनी सर्वांच्यासाठी वासाची सोय केलेली आहे। तसेच निबंधमाला पुस्तक इथं आलेले आहेत, आणखीन ज्यांना निबंधमाला पुस्तक पाहिजे असतील, प्रवचनची सीडी 24 आना सीडी ज्यांना हवे असतील त्यांनी इथं मिळतील। त्यांना
जिनको 24 आना की सीडी चाहिए उपलब्ध आहे आज, और एक और निबंध रत्नावली करके यही इसका लोकार्पण किया था वो भी आज अवेलेबल है, और अन्य भी अपने सीडी प्रवचन के बने हैं, जिनको चाहिए आज ले जा सकते।
सकता है, षटखंड आगम से ले आओ। प्रतिक्रमण ग्रंथ